में सुनने के लिए डायल कीजिए 647-872-4900 मॉन्ट्रियल 514-907-6288। इसके अलावा कैलगरी, वैंकूवर, एडमिंटन और रिजाना के नंबर्स आप eawaz.com की वेबसाइट पर जाकर हासिल कर सकते हैं। हमारी लाइव 24 घंटे की नशियात के लिए विजिट कीजिए eawaz.com। लाइक करें फेसबुक पेज eawaz, डाउनलोड करें फ्री eawaz ऑफिशियल ऐप। रेडियो 770 AM, वॉइस ऑफ कम्युनिटी। फॉर मोर डिटेल्स विजिट eawaz.com।
खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम से हम आपको रेडियो प्रोग्राम मसीह की आवाज़ वॉइस ऑफ क्राइस्ट में खुशामदीद कहते हैं। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में हर इतवार सुबह 8 से 9 बजे तक क्राइस्ट आर किंग लूथरन चर्च मिसिसागा के तआवुन से पेश किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम की बदौलत आपकी जिंदगी तब्दील हो सकती है और ये आपकी जिंदगी के लिए बाबरकत साबित होगा। प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहें और अपनी कीमती राय से हमें आगाह कीजिए। आज के मेजबान आपकी खिदमत में हाजिर हैं।
ریڈیو مسیح کی آواز 770 AM ٹورانٹو آپ سے مخاطب ہے۔ گڈ مارننگ۔ خداوند یسوع مسیح کے محب نام میں تمام سننے والوں کی خدمت میں سلام۔ ریڈیو مسیح کی آواز آپ کی خدمت میں ہر اتوار صبح 8 سے 9 بجے تک کرائسٹ آور کنگ لوتھرن چرچ مسیساگا کی جانب سے AM 770 میٹر بینڈ پر نشر کیا جاتا ہے۔ ریڈیو مسیح کا ہوسٹ کمل دین اور ریڈیو مسیح کے پریچر جناب پادری جیمز لوک آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ سب کو خوش آمدید اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہر اتوار ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور خداوند کے زندہ کلام سے برکت پاتے ہیں۔ آج آمد کا پہلا اتوار ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور کچھ غیر قوم کے جو لوگ ہیں وہ نہیں بھی جانتے ہوں گے، لیکن انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی جو پہلی آمد ہے، جسے ہم کرسمس بولتے ہیں، بڑا دن بولتے ہیں، اس میں 5-4 اتوار ہوتے ہیں کرسمس سے پہلے، اور آج آمد کا پہلا اتوار ہے۔ اور آپ مسیحی لوگ جانتے ہیں کہ آج چرچز میں چرچز کو سجایا جاتا ہے موم بتیوں کے ساتھ اور لائٹس کے ساتھ، اور ریپ لگائی جاتی ہے، اس میں کینڈل جلائی جاتی ہیں۔ اس کا بھی ایک خاص مقصد ہے، تو میں پروگرام کے دوران آپ کو اس کا مقصد بتاتا جاؤں گا تھوڑا تھوڑا۔ لیکن اس سے پیشتر کہ ہم پروگرام کو شروع کریں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر ہے 647-416-620-1778، اور ہمارے چرچ کا ٹیلی فون نمبر ہے 905-822-8931، اور میرا ٹیلی فون نمبر 647-339-0397، اور جناب پادری جیمز صاحب کا ٹیلی فون نمبر ہے 416-454-2581، ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے۔ اور اگر آج کے میسج کے حوالے سے آپ کا کوئی ذہن میں کوسچن ہو تو آپ برائے مہربانی پاسٹر جیمز لوک صاحب کو ڈائریکٹ کال کر سکتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کو آپ ٹیلی فون کے ٹورانٹو میں سننے کے لیے ٹیلی فون ڈائل کر سکتے ہیں 647-872-4900، پروگرام کو eawaz.com کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں، اور کینیڈا کے دیگر شہروں میں آپ ٹیلی فون نمبر بڑی آسانی سے ای آواز کی ویب سائٹ سے جا کر حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہم بتاتے ہیں مونٹریال، ایڈمنٹن، کیلگری اور ریجائنا کے ٹیلی فون نمبر، اور وینکوور کے ٹیلی فون نمبر آپ بڑی آسانی سے لے سکتے ہیں۔ फेसबुक के ऊपर आप देख भी रहे होंगे कि आप अभी प्रोग्राम चल रहा है फेसबुक पे, आप अभी देख रहे हैं और आप फेसबुक पे पादरी जेम्स लूक साहब को देख सकते हैं और सिर्फ मेरी आवाज सुन सकते हैं। लेकिन बहरहाल मकसद यह है कि हम खुदावंद का कलाम आप तक पहुंचे किसी भी सूरत में हो, आवाज की सूरत में, गीत की सूरत में, तो हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और खुदावंद के कलाम को आप तक पहुंचाते हैं। मैं बताना चाहता हूं आज, जैसा कि मैंने बताया कि आमद की रीत जो है इसका भी एक खास मकसद है। लिथुरिया साल का आगाज आमद के मौसम से होता है। बड़े दिन से पहले चार इतवार आमद के इतवार कहलाते हैं। इन चारों इतवारों के दरमियान आमद के अयाम कहलाते हैं और ये अरसा खुदावंद यीशु मसीह की पहली और दूसरी आमद की तैयारी का अरसा है। जिस तरह साल के दौरान कुदरत के मौसम अपना रंग बदलते हैं और मौसमों के बदलने के साथ साथ फिजा का रंग और माहौल तब्दील हो जाता है, इसी तरह लतूरिया मौसम के तब्दील होने से और आबादी और माहौल तब्दील हो जाता है। और आप देखते होंगे चर्च में जो कपड़े लगाए जाते हैं उनको भी तब्दील किया जाता है, उनका रंग जो है वो जामनी हो जाता है। आमद के अयाम में इंसान को तौबा करके खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए खुद को तैयार करने की दावत दी जाती है। खुदावंद यीशु मसीह की आमद पहले यूहन्ना रसूल की मुरादी करते हुए उन्होंने कहा, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। खुदावंद की राह तैयार करो, उसकी शहराह को सीधा बनाओ। आज भी कलीसिया ईमानदारों को तौबा और खुदावंद की आमद के लिए तैयार रहने की दावत देती है। आमद के अयाम के दौरान रीत बनाई जाती है और ये रीत दायरा नमा सदाबहार दरख्तों की शाखों और पत्तों से बनाई जाती है और इसकी गुलाई खुदा की दायमी मोहब्बत की अलामत है, जिससे सदाबहार दरख्तों की शाखें खिजां और बर्फबारी के मौसम में भी नहीं मुरझाती। इसी तरह खुदावंद की मोहब्बत दायमी है जिसको जवाल नहीं। गोल दायरा अब्दियत का निशान है। जिस तरह आमद की रीत के दायरे का ना शुरू है ना आखिर है, इसी तरह खुदा की मोहब्बत अब्दी है और खुदा अब्दी है। वो अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, उसी की हमेश की है। आमद की रीत में लगाए हुए सीधे सदाबहार सब्ज पत्ते जिंदगी की अलामत है। ये मसीह में नई जिंदगी जाहिर करते हैं। ये नई जिंदगी एक मसीही को बपतिस्मा हासिल होती है और ये जिंदगी कभी मुरझाती नहीं। मसीह की जिंदगी उस सरसब दरख्त की मानद है जो पानी की नहरों के किनारे लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इससे पेशतर हम प्रोग्राम को शुरू करें, मैं पादरी साहब से कहूंगा दुआ शुरू करें ताकि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। जी पादरी साहब,
आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने जहन जो है वो आलम बाला पर लगाएं, खुदा से रابطہ कायम करें। खुदा खुदा हमारे प्यारे आसमानी बाप, हम शुक्र करते हैं कि हम जिंदों की जमीन पे हैं, क्योंकि ये तेरी बख्शिश है, तेरा रहम है। और आए खुदा खुदा हम शुक्रगुजार हैं अपने मुल्क कनाडा के लिए, जिसमें हम आराम और चैन की जिंदगी गुजारते हैं। हम शुक्रगुजार हैं आए खुदा अपने स्टूडियो के लिए, AM 770 के लिए और उनके स्टाफ के लिए, जिनकी मदद से ये प्रोग्राम लोगों तक पहुंचता है। आए खुदावंद हम दुआ करते हैं उनके स्टाफ को बड़ी बरकतों से मालामाल कर। इसी तरह से आए खुदावंद हम दुआ करते हैं उन तमाम सुनने वालों के लिए जो इस वक्त अपने रेडियो और कंप्यूटर ऑन करके तेरे पाकलाम के जरिए से तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं। बख्श दे के ये आज का मैसेज जो है उनके दिलों में उतरे और उनकी जिंदगियां तब्दील हो सके। खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं अच्छे मौसम के लिए, और जबकि आए खुदावंद खुदा ठंडा मौसम शुरू हो चुका है, आए खुदावंद तमाम लोगों को हर तरह की बीमारियों से महफूज रख। आए खुदावंद हम दुआ करते हैं कि COVID-19 को आए खुदावंद खुदा इस दुनिया से दूर कर, ताकि आए खुदावंद सारे लोग जो हैं वो अपने गुनाहों से तौबा कर सके और तेरा कहर जो है वो टल सके। आए खुदावंद खुदा हम दुआ करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो बीमार हैं, खुसूसन COVID-19 की वजह से बीमार हैं या किसी और वजह से बीमार हैं, روحانی اور جسمانی طور پہ بیمار ہیں, اے خداوند ہم سب پہ رحم کر. خصوصاً اے خداوند ہم دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے نام ہمیں دے رکھے ہیں تاکہ ان کے لیے دعا کی جائے. بہن علیش پلک کے لیے شکر گزار ہے کہ وہ اب دو دفعہ ہاسپٹل جا کے بیک سرجری کی وجہ سے اے خداوند اب وہ بہتر گھر پہ ہو رہی ہے. اسی طرح سے اے خداوند ہم دعا کرتے ہیں مسکان کے لیے, کاشف کے لیے, سنگم کے لیے, سائمہ کے لیے, یہ لوگ جو لاہور میں ہیں جبکہ کاشف کی دونوں ٹانگیں آئے خداوند خدا بیکار ہو چکی ہیں ایک رکشہ ایکسیڈنٹ میں, تو بخش دے کہ ان سب پہ تو رحم کر. اسی طرح ہم دعا کرتے ہیں پیسٹر فرینک جان کے لیے جس کو تو نے اپنے پاس بلا لیا, اور آئے خداوند ان کی فیملی کو تسلی دے. زینت یوسف جو منٹریال میں ہیں ان کے لیے ہم شکر گزار ہیں کہ وہ سرجری کے بعد آپ گھر پہ آ چکی ہیں. اسی طرح سے آئے خداوند ہم دعا کرتے ہیں سلیمہ جو کراچی پاکستان سے ہیں, کین کامران جو یونائٹڈ کنگڈم سے ہیں, اور آئے خداوند خاص طور پہ ہم دعا کرتے ہیں پیسٹر شہباز غوری کے لیے جو کہ آئے خداوند ہاسپٹل سے آئے خداوند اس کو ان کو ڈسچارج کر دیا گیا اور اب وہ اپنے گھر پاکستان روانہ ہونے والے ہیں. آئے خداوند خدا اگر تیری پاک مرضی ہو تو ان پہ رحم کر, کیونکہ وہ ڈاکٹرز نے کینسر کی وجہ سے ان کو جواب دے دیا ہے. آئے خداوند یہ تمام باتیں, تمام مناجاتیں آئے خداوند تیرے تخت کے سامنے لاتے ہوئے تیرے پاک بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں, آمین.
آمین. اس نے قدیم زمانہ میں زبلون اور نفتالی کے علاقوں کو ذلیل کیا, اور آخری زمانہ میں قوموں کے گلیل میں دریا کے سم یردن کے پار بزرگی دے گا. جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی, جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا. تو نے قوم کو بڑھایا, تو نے ان کی شادمانی کو زیادہ کیا. وہ تیرے حضور ایسے ہیں جیسے فصل کاٹتے وقت اور غنیمت کی تقسیم کے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں. اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا, اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی, اور اس کا نام عجیب مشیر, خدا قادر, ابدیت کا باپ, سلامتی کا شہزادہ ہوگا. اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی. وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے اب تک حکمران رہے گا, اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا. رب الفاج کی غیوری یہ کرے گی. خدا مند اپنے زندہ اور مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے, آمین. عزیزوں آئیں پروگرام کے شروع میں ایک خوبصورت گیت سنتے ہیں آج کے موسم کے آمد کے حوالے سے.
تیرے آمد کے نغمے فضا میں رچے, تیرے آمد کے نغمے فضا رچے, پھر بہاروں کے آنے پہ گلشن سجے, تیرے آمد کے نغمے فضا میں رچے. تیری آمد کے نغمے فضا میں رچے. بھولے بھٹکے ہوں کو ہے منزل ملے, भूले भटके हूँ को है मंजिल मिली, बंद कल्बो नजर की कली है खिली, तेरी आमद के नगमे फजा में रचे, फिर बहारों के आने से गुलशन सजे, तेरी आमद के नगमे फजा में रचे। सफर आ गया तेरी आमद के नगमे फजा में रचे, फिर बहारों के आने से गुलशन सजे, तेरी आमद के नगमे फजा में रचे।
अजीजो आपने गीत सुना के आज के आमद के मुतालिक, जो हमने गीत सुना के तेरी आमद के नगमे फजा में रचे, आप देख रहे हैं कि हर तरफ आज बर्फ है, आमद पहला इतवार है और बर्फ पड़ गई है। इसी तरह आज देखेंगे कि आप खुदाम के कलाम में से पारिशा में क्या बताना चाहते हैं। जैसा कि हम बताते हैं कि आज फर्स्ट संडे ऑफ एडवेंट है, इसका मतलब है कमिंग। इसी सीजन के दरमियान चर्चेज में 5 कैंडल लगाई जाती हैं, जिसका एक खास मकसद होता है। पहला कैंडल जो है होप है, फिर लव है, फिर जॉय है, फिर पीस है, और क्रिसमस डे वाले दिन क्राइस्ट कैंडल को रोशन किया जाता है। काश के आज के पैगाम के वसीला से और आने वाले हफ्तों में जो पैगाम पाली साहब देंगे उसके वसीला से हमारे दिल जो हैं वो भी अपने आप को तैयार करें, दिल में खुदा यीशु मसीह को कबूल करें, अपने दिल को साफ करें। आप जानते हैं कि हमारे दिल में क्या कुछ भरा है, दुनियावी तौर पर आजकल क्या हो रहा है, लेकिन गुनाह बहुत बढ़ चुका है। लेकिन वक्त है अभी खुदावंद की आवाज, खुदावंद के खादमों के जरिए हम सुने और खुदावंद के कलाम को कबूल करें। जी पादरी जेम्स लुक साहब, खुदावंद का कलाम हम तक पहुंचाएं।
खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। जैसे कि आपको कि आज जो मैसेज है वो है कमिंग ऑफ मेसिया। कमिंग ऑफ मिसाया का मतलब ये है, जिसको एडवेंट भी है। एडवेंट जो है ये लातिन का एक लफ्ज है जिसका मतलब ये होता है कि कमिंग, एंटीसी। ये तमाम चीजें जो है उम्मीद, जैसे कि आपको अभी बताया गया और दिखाया भी गया कि किस तरह से ये 4 कैंडल्स जो में नजर आती हैं और 4 कैंडल्स के ऊपर लिखा हुआ है होप, पीस, जॉय एंड लव। क्योंकि ये अल्फाज जो हैं ये मसीहत में बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जब मसीहा की आमद है तो इसका मतलब है कि एक उम्मीद नजर आती है। जब मसीहा आ जाना है तो उसने क्या एक अमन लेके आना और एक खुशी की खबर हमें मिले, और उसके साथ मोहब्बत है जो खुदा ने इंसान से की कि वो अर्श को छोड़ के फर्श पे आ गया और एक नन्हे मुन्ने बच्चे की तरह वो हमारे दरमियान में आए। 4 हफ्ते क्रिसमस से पहले हैं, जो कि हम मसीहा की आमद का के मुतालिक हम बात करेंगे। आज उसका पहला सेशन है और इसलिए मैं आपसे ये बताता चालू कि आप हमारे साथ रहें ताकि आप बहुत कुछ सीख सकें और ये शायद आपकी जिंदगी भी तब्दील कर सकें। क्योंकि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब आप गौर से सुनेंगे और देखेंगे कि खुदा का इंतजाम है क्या, तो आप खुद ब खुद खुदा की तरफ पीछे चले आएंगे। आपको मालूम है कि क्रिसमस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, त्यौहार है, जो कि ईस्टर ईस्टर की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईस्टर यही मसीह ये कुर्बान का और फिर मौत पे फतह हासिल होगी। लेकिन आज जो है ये मसीह जो है एक नन्हे बच्चे की तरह आए खुदावंद, ये जो है ये मेंजर में या चरनी में जन्म ले चार हफ्तों आज पहला हफ्ता। तो इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप हमारे साथ रहें, और यही एडवेंट जो एडवेंट का लातीनी कहा कि ये इसका मतलब है आना, इसका मतलब है एंटीसिपेशन कमिंग इन टू। और इसलिए हमें आज से, और ये एडवेंट का मकसद ये है कि चर्च ने इसको नवंबर के आखिरी संडे से शुरू किया, यानी कि चार संडे पहले एडवेंट का सीजन शुरू हो जाता है, और इस तरह से एडवेंट सीजन के मुतालिक बात करेंगे। अब आप जैसे आपको मैं इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि इसका रंग जो है, इसका रंग जो है वो ऑलिव है, जैसे आप ये सेकंड उसमें आप देखें ये रंग जो है ये ऑलिव रखा जाता है या पर्पल रखा जाता है, क्योंकि ये निशानी है रिपेंटेंस। अब ये बहुत अच्छा मौका है कि लोग अपने गुनाहों से तौबा करें ताकि वो मसीहा को अच्छी तरह से वेलकम करें। ये बताता चलूं कि ये कोई मन घड़ित कहानी नहीं है, ये एक्चुअली हैपेंड 2000 साल पहले, और हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश वो बैतलहम में हुई। ये मैं आपको पिक्चर जो दिखा रहा हूं ये चर्च एक्टिविटी है जो कि बैतलहम इसराइल में है। चूंकि मैं और बहुत सारे और लोग बहुत दफा जा चुके हैं, वो जगह देखी है कि किस तरह से उस बहुत बड़ा चर्च है वहां पे, और उसके जब चर्च में एंटर होते हैं उस चर्च में एक्टिविटी में, तो इस तरह का बनाया गया है कि हर आदमी झुक के वहां से अंदर जा सके, क्योंकि यहां पे किंग ऑफ किंग बादशाहों के बादशाहों का जन्म होना, इसलिए उस जगह को बहुत इज्जत देना चाहिए। अगली स्लाइड में आप देख रहे हैं कि यहां पे ये स्टार ऑफ डेविड आपको दिखाया गया है, जो कि आपको नजर आ रहा है कि इर्द गिर्द बहुत सारी लाइट्स हैं। ये जो है ये ऑर्थोडॉक्स चर्च शुरू के चर्च में ये तमाम बिल्डिंग्स बनी थी जहां पे खुदा की हुई थी। इस तरह से हम कहते हैं कि खुदा की पैदाइश जो है वो बैतलहम में हुई, जो कि यरूशलेम में के 3 मील दूर साउथ में वाक्य है। ये तमाम जगह जो है, और मैं जब ग्रुप्स लेके इस पर जाता हूं तो वो लोग जो मेरे साथ चुके हैं वो देख होंगे या जान सुन रहे होंगे कि वो जगह पे जाने वो कितना दिल को लुभाने वाली बात थी और जिंदगियां तब्दील करने वाली बात थी। हमें जानना है कि ये मसीहा जो है, ये मसीहा किस तरह से दुनिया में आएगा और किस तरह से हम उसको जानेंगे। हमें मालूम है कि बहुत सारी जब आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो बहुत सारी चौपाइयां मसीहा के मुताबिक है। हमें ये पता है कि किस तरह से बनी इसराइल कौम थी, वो बहुत सारे जो हमला आवर थे उनकी वजह से बहुत नाउमीद थी। अभी अब थोड़ी सी हिस्ट्री आपको मैं बताता चलूं कि किस तरह से हमें बताया गया है उस वक्त जो थे जब सेल्यूसिड उनको कहा जाता है. सेल्यूसिड्स जो थे ये एक्चुअली हमलावर थे. आपको अलेक्जेंडर ग्रेट का तो पता है जब अलेक्जेंडर ग्रेट की हुकूमत जो है दो टुकड़ों में बस बंट गई तो वहां पे एक थे वो उनको कहलाए जा और वो जो थे उनमें बहुत सारे रूलर थे या आप कह लीजिए कमांडर थे. उनमें से एक कमांडर का नाम था एंटियोकस एपिफनेस और ये एपिफनी फोर था जिसके मुताबिक ज्यादा जिक्र किया जाता है क्योंकि जब इन्होंने इसराइल पे कब्जा कर लिया तो एंटियोकस एपिफनी जो है उसने जितनी भी जूश वर्शिप थी जो भी यहूदी लोग जो तरह की इबादत करते थे उसको बंद कर दिया और उनको हुक्म दिया गया कि वो देवताओं की प्रस्तिश कर. इसके अलावा जो सबसे उसने घिनौना काम किया वो ये किया था कि उसने पाक तरीन मकाम पर सूअर की कुर्बानी. आपको मालूम है कि यहूदी को जो है वो पिग्स को सूअरों को अच्छा नहीं समझते इसलिए इसने उनको चिढ़ाने के लिए ये किया कि एंटियोकस एपिफनी ने और ने वो सूअर की कुर्बानी जो है वो पाक तरीन मकाम पे दी है. आपको मालूम होना चाहिए कि पाक तरीन मकाम जो है वो हैकल में रखा गया था. आपको मालूम है कि खुदा ने सुलेमान बादशाह को कहा था कि तू हैकल बनाएगा और उसने वो हैकल बनाई और उसमें एक पाक तरीन मकाम रखा गया जहां पे ये समझा जाता है कि खुदा मौजूदगी होती थी. और सरदार काहिन जो है वो साल में एक मरतबा सिर्फ एक मरतबा उसमें जा सकता. कुर्बानियां तो और भी जगह होती थी यानी टेंपल के और भी हिस्सों में होती थी लेकिन ये कुर्बानी थी ये सबसे इंपॉर्टेंट थी. वो बछड़ों का खून लेके वहां पे जाता था और खुदा से अपनी कौम के लिए मुआफ़ी मांगता था. अब आप देख लीजिए काम जो खुदा की मौजूदगी है उसका शिकायना भी था और ये शिकायत जो है आज भी यहूदी लोग ये समझते हैं कि गो के टेंपल जो है वो हैकल जो है तबाह हो चुकी है. आपको ये भी मालूम है अगर आप ज्योग्राफिया देखें तो ये टेंपल जो है ये 586 कबल मसीह नबूकत नजर ने तबाह कर दी और फिर दूसरी दफा फिर ये खुदा आने के बाद 70 बाद उस मसीह में फिर तबाह किया था रोमन हुकूमत. और ये मैं इसलिए आ रहा हूं क्योंकि 167 में 167 बिफोर क्राइस्ट यानी कबल मसीह में एक चूंकि ये लोग जो थे सेल्यूसिड थे ये वहां पे काबिज थे इसलिए यहूदियों का एक ग्रुप था जिसको के मैकबियंस का उन्होंने बगावत की 167 बीसी में और उनका जो कमांडर था उसका नाम था जूडस मैकबियस इसीलिए उसको मैकबियंस कहा. और ये जूडस मैकबियस ने जब बगावत की और रोमन्स की मदद से सेल्यूसिड्स को वहां से उन्होंने शिकस्त दी और यरूशलेम को फिर अपने कब्जा कर लिया. जूडस मैकबियस जो था वो मारा गया था और उसका भाई जो था जोनाथन मैकबियस वो उसने इसको टेक ओवर कर लिया. लेकिन बात हेस्मोनियन डायनेस्टी आ जाती है. हेस्मोनियन डायनेस्टी जो थी वो भी जूश डायनेस्टी थी. वो जुडिया में यहूदिया में उसके बाद फिर रूमी हुकूमत ने फिर से उनको भी हरा के तो कब्जा कर लिया. और फिर हम देखते हैं कि जब खुदावर यीशु मसीह की पैदाइश होती है यानी मसीह की पैदाइश होती तो उस वक्त रूमी हुकूमत जो है वो काबिज है. वो हुक्मरान है। इसलिए आप देख सकते हैं कि जब इतने सारे इससे पहले में जाया जाए तो हम देखते हैं कि बहुत दफा पे यहूदी लोग जो हैं उनको उनके ऊपर हुक्मरान बहुत सारे रूलर्स या बहुत सारे इन्वेडर्स जो हमलावर हैं वहां पे आए हैं। हम ये देखते हैं कि किस तरह से उस वक्त मीडो पर्शियन जो है वो भी हमलावर हुए थे और उनका एक बाद में एक जो उनका रूलर था या उनका कमांडर था उसका नाम है साइरस। अगर आप एक और कॉइन अभी दिया है इसके ऊपर जो कि साइरस की तस्वीर इसराइल ने बनाई है क्योंकि साइरस ने उनको जाने दिया था जब वो कैद में थे कि उनको कहा था कि तुम जाओ और यरूशलेम को फिर से आबाद करो, यरूशलेम की दीवारें बनाओ। नहमिया को ये काम दिया। नहमिया नबी जो है वो आते हैं और फिर से यरूशलेम की दीवारें बनती है, यरूशलेम के फिर से टेंपल वर्शिप शुरू होती है। ये पहली जब तबाही हुई है उसके बाद ये और इसीलिए यहूदी लोग जो है साइरस को बहुत अपना एक तरह से कहना चाहिए दोस्त मानते हैं, इसलिए उसकी उन्होंने फिगर जो है वो कॉइन पे दे रखी है। एक और मजे की बात यह है कि अभी लेटली ये कॉइन जो है वो उन्होंने इश्यू किया है, एक तरफ तो साइरस की पिक्चर है और दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूं किसकी पिक्चर है, डोनाल्ड ट्रंप की पिक्चर। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा काम किया कि उसने जो दारुल खिलाफा है कैपिटल है वो यरूशलम ले आया है, इसलिए यहूदी के भी बहुत शुक्रगुजार हैं, वो भी उनका बहुत दोस्त है। बहरहाल वो पॉलिटिकल है, हम उसमें नहीं जाएंगे, हम बाइबल मुकद्दस की बात करेंगे कि किस तरह से यहूदी लोग जो थे वो एक मसीह के इंतजार में थे और बहुत सारे लोग जो हैं वो बिल्कुल डिसअपॉइंट। आप देख लीजिए 70 बरस तक अगर एक कौम पे मुख्तलिफ हमला आवर जो हैं वो काबिज होते चले गए, उनको कैद करके काबुल ले जाया जाता तो उनकी क्या हालत होगी। वो एक मसीहा इंतजार में थे और वो इसलिए हुआ गो के ये खुदा की कौम कहलाई जाती है, लेकिन इसलिए हुआ क्योंकि ये कौम जो थी ये बुतों की परस्तिश में ये खुदा बहुत दूर हो गए थे, खुदा को भूल चुके थे और जब हम खुदा को भूल जाते हैं तो खुदा हम पे बहुत सारी लानतें भेजता है। जैसे कि मेरा कहना है और मेरा ईमान है COVID-19 की इस दुनिया में इस वजह से आया है, ये खुदा का कहर है जो इंसान पे है, क्योंकि इंसान जो है उसको अब गुनाह की पहचान भी नहीं थी, वो गुनाह में इतना डूब चुका है कि अब वो खुदा से बहुत दूर हो चुका है। मेरे भाई और मेरी बहन, हम तो खुदा को आज ये हालत हो गई है कि बहुत सारे लोग जो है इस दुनिया में खुदा को खुदा मानते ही नहीं, वो खुद खुदा बने। इसीलिए उस वक्त भी यही हालत थी, उस वक्त भी यही हालत थी। हम देखते हैं कि उस वक्त जो है वो एक खुश की खबर हमें मिलती है। हम बाइबल मुकद्दस से देखना चाहते हैं, एक किताब है जिसका नाम है ड्यूटरोनमी। ये तौरा की किताब है, तौरा में 5 किताबें हैं, उनमें एक ड्यूटरोनमी यानी इस्तिश्ना की किताब है, उसमें से हम उसका 18वां बाब और 13 से लेकर 19 आयत तक हम पढ़ेंगे कि वहां पे एक उम्मीद नजर आती है। और मैं दरख्वास्त करूंगा अपने भाई कमलदीन साहब से कि वो ये हिस्सा मुकद्दस का हमारे लिए पढ़े, बड़े गौर से सुनिएगा कि क्या लिखा।
भाई साहब 13वीं आयत से 19वीं आयत तक।
जी 13वीं आयत तक।
तू खुदावंद अपने खुदा के हजूर कामिल रहना, क्योंकि वो कौमें जिनका तू वारस होगा शगुन निकालने वालों और फालगिरों की सुनती हैं, पर तुझको खुदावंद तेरे खुदा ने ऐसा करने ना दिया। खुदावंद तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानत एक नबी बर्फा करेगा, तुम उसकी सुनना। یہ تیری درخواست اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا کے مجمع کے دن حورب میں کی تھی، کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں. اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانت ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام ان کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے نہ سنے تو میں ان کا حساب ان سے لوں گا. لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا یا اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے. جی بھائی صاحب.
جی بہت شکریہ. اب یہاں پہ آپ نے سنا ہے کہ کس طرح سے وہ بنی اسرائیل قوم ہے، وہ کن میں، ان میں بہت سارے وہ بہت پتہ نہیں کس کس کو مارنا شروع ہو گئے ہیں اور خدا سے بہت دور ہو چکے ہیں، لیکن خدا نے کو ایک خبر دی ہے کہ تجھ میں سے میں ایک نبی پیدا کروں گا جو کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ جو تمہیں ایک اچھی خبر بتائے گا اور وہ میری طرح. اب یہاں پہ یہ حوالہ جو ہے ہمارے کریٹیکل مسلمان دوست جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید پروفٹ محمد کے لیے کہا. بھائی اس کو اگر آپ صحیح طور پہ کریں اور اس کے تمام وہ مسیحا کے تمام خواص جو ہیں کیریکٹرز وہ دیکھیں تو کوئی آدمی اس پہ فٹ نہیں بیٹھ سوائے خداوند یسوع مسیح. اور یہی بات جو ہے ہمیں بہت دفعہ بتائی گئی ہے، کیونکہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ مسیحا جو ہے کی خصوصیات ہیں، اس کی خصوصیات ہم نے دیکھتے جب یہ بچہ ہوگا تو سپر نیچرلی پیدا ہوگا، اور اس کے بعد جب اس کے ہم کام دیکھیں تو کام آپ سمجھ لیجئے کیونکہ کام جتنے بھی ہیں وہ میریکلز ہیں، وہ تمام کے تمام میریکلز ہیں جو ہمیں نظر آئیں گے. وہ بیماروں کو اچھا کریں گے، وہ انتھوں کو بینائی دیں، یہاں تک کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کریں. کیا یہ خصوصیت اور شخص میں پائی جاتی؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کوئی اور شخص جو ہے وہ مسیحا ہوگا؟ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہسٹری میں بہت سارے لوگ آئے ہیں جو کہ اپنے آپ کو مسیحا انہوں نے ڈکلیئر کیا، لیکن ہمیں ان کے کام پتہ جب چلے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ مسیحا نہیں. صرف ایک شخصیت ہے جو کہ مسیحا پہ پوری اترتی اور وہ خداوند یسوع مسیح ہیں. وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ خدا کا پلان جو ہے، خدا کا پیغام جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ پیغام جو ہے وہ ہمیں بائبل مقدس میں ہی مل سکتا ہے. اس کا جو نجات کا پلان ہے وہ ایک ہی ہے، کہ اس نے خود خاکی صورت اختیار کر کے زمین پہ آیا. کیونکہ جب ہم قربانی کے کانسیپٹ پہ جاتے ہیں تو قربانی کا کانسیپٹ، جب خدا نے ابراہیم کو کہا تھا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق قربانی ماؤنٹ مورایا پہ یعنی اس پہاڑ پہ کر، تو اس وقت وہ قربانی جو تھی آخری قربانی تھی احمد، جو کہ بعد میں 2000 سال بعد میں آنی تھی. یعنی خدا یسوع مسیح کا آنا جو ہے وہ اس دنیا میں اسی لیے ہے کیونکہ انہوں نے میرے اور آپ کے گناہوں کو اٹھا کے صلیب پہ قربان ہونا ہے. اور کتنے لوگ ہیں جو صلیب پہ قربان ہوئے ہیں؟ آپ مجھے بتا دیجئے کوئی ایسا مسیحا ہے جو کہ اپنے آپ کو مسیحا کہے اور وہ میرے اور دنیا کے گناہ، کیونکہ لکھا ہوا ہے بائبل مقدس میں کہ خدا جان سے اتنا پیار کیا، اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے داغ نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ زندگی تو ہے صرف बेटे में है और कहीं नहीं आपको मिल सकती, और कहीं नहीं आपको मिल सकती। इसीलिए वो खुद तो नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात की निशानदेही करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के, जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री का आगाज करते हैं, जब वो लोगों को शिफा देते हैं, तो लोग खुद उठ कुछ कुछ कहने के कहना शुरू हो जाते हैं। आइए हम देखते हैं यूहन्ना रसूल की झील उसका 6:14 में। जी एल्डर साहब, ये जरा बताइए कि वहां पे क्या लिखा।
बस जो मौजज़े उसने दिखाया वो लोग उसे देखकर कहने लगे, जो नबी दुनिया में आने वाला था फिर हकीकत यही है।
जो नबी दुनिया आने वाला था
फिर हकीकत यही।
और इस पिशना में जो है तौरा की किताब में इसी बात की निशानदही की गई है कि वो नबी जो है वो जो आने वाला था, तुम में से एक नबी बर्पा करूंगा जो तुम्हारी सलामती के लिए, तुम्हारी खलासी के लिए होगा। और जब हम आगे इतवार को देखेंगे तो हमें मालूम होगा किस तरह से वो जो है उसके मुतालिक पेशगोईयां की गई हैं, वो एक्चुअली 100% हम उस पे लागू आती। आइए हम देखते हैं वो पेशगोई जो यसाया नबी का सहीफा है वह उसका 9 निकालते हैं। यसाया नबी का सहीफा 9:6-7 जरा एल्डर साहब गौर से और जोर से पढ़े।
भाई साहब मैं बड़ी जोर से पढ़ता हूँ लेकिन यहाँ से रेडियो स्टेशन जाती है फिर आवाज आप तक पहुँचती है।
ओके,
इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे कयाम बख्शेगा। रबुल फाज की गयूरी ये करे।
जी थैंक यू। यहाँ पे लिखा हुआ है कि खुदावंद आपको तुम एक निशान, देखो एक कमारी हमला होगी और बेटा होगा और उसका नाम इमानुएल। इमानुएल का मतलब क्या है? खुदा हमारे साथ। क्या कोई इंसान ऐसा कह सकता है? क्या कोई इंसान ऐसा कह सकता है? और ये हम एक और हवाला देखेंगे क्योंकि 9 जो है वहां से लिखा है कि एक बेटा सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम क्या होगा? उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। क्या कोई शख्स ऐसा हो सकता है? ये सिर्फ खुदा की जात है जो ये बात कह। जब खुदावंद यीशु मसीह है उसमें खुदा है, वो खुद खुदा है जो कि इंसान की सूरत में इस दुनिया में आया और आने वाला है। जब क्रिसमस पे हम ये बात करेंगे तो फिर मैं और आप ये बात जानेंगे कि किस तरह से हमें ये बात मिलती है। जब शुरू की कलीसिया आती है और जो है हमें पता चलता है रसूलों के इमाल और उसका 3, उसका अगर 3 हम देखें तो उसकी 18 से लेके और उसकी 22 तक देखना चाहते हैं। ये लिखा है कि इन बातों की खुदा ने सब नबियों की जुबानी पेश कर खबर की कि उसका मसीह दुख उठाएगा और इसी तरह पूरी की पर तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदा के हजूर से ताजगी के दिन आए और वो उस मसीह को जो तुम्हारे वास्ते मुकर्रर हुआ है यीशु को भेजे। जरूर है कि वो आसमान में उस वक्त तक रहे जब तक कि वो सब चीजें बहाल न की जाए जिनका जिक्र खुदा ने अपने पाक नबियों की जुबानी किया है दुनिया के शुरू से हुए हैं। चुनाचे मूसा ने कहा कि खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए कुछ सा एक नबी पैदा करे। मेरे भाई और आज जो है आज मौका एडवेंट का पहला संडे है इसलिए हमें मौका खुदा देता है, हर साल देता है, लेकिन आप इंतजार ना करें। آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں تاکہ یہ مسیح آپ کی زندگی میں بھی آ سکے. یہ بڑی کہہ رہا ہوں, یہ مسیح آنا ہمارے دل میں, ہمارے دلوں پہ حکومت کرنا جو ہے اس کے آنے کا مقصد ہی یہی تھا. اس لیے میں آپ سے کرتا ہوں کہ ایک ہی مسیح ہے, کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی اور نام نہیں بخشا کہ جس کے وسیلہ سے نجات پا سکے. آج نجات ہے, اس لیے آپ آج توبہ کریں اور کرسمس کے لیے تیار ہوں تاکہ اس کے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو اچھی طرح سے آپ ویلکم کر سکے. خداوند آپ کو بہت برکت دے. آمین.
آمین. بہت شکریہ پائی صاحب خداوند کے زندہ کلام کے لیے. آپ نے بڑی خوبصورتی سے حصے میں سے بتایا کہ اور اس کے بعد کس طرح آپ نے اس کلام کو ختم کیا, اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آج ہمیں موقع ہے کہ ہم خداوند اپنے خدا کو اپنی شخصی زندگی میں قبول کریں. اور آپ نے یہ بھی بتایا, بائبل مقدس بتاتی ہے کہ سینکڑوں سال پہلے پیشن گوئیاں ہوئی, نبیوں نے پیشن گوئیاں کی, ان لوگوں نے نہ سنی, لیکن ہم شکر کرتے ہیں خدا کا کہ ہم نئی اس دنیا میں نیا یروشلم ہے, کہ خداوند نے ہم خداوند یسوع مسیح کو ہم نے قبول کیا. ہمارے دادا پردادا جو تھے غیر قوم تھے, اور خداوند نے ان کو چنا, ان کے وسیلہ سے اولاد چلتی آئی. اور جیسا بتاتے ہیں کہ ہر جو مسیحی ہیں ان کی چوتھی یا پانچویں جو پشت ہے وہ ابھی تک چل رہی ہے تاکہ وہ مسیح میں چلتے جا رہے ہیں. خداوند کا شکر کرتے ہوئے اس گیت کو سنیں کہ نبیوں نے بھی خداوند یسوع مسیح کی پیشن گوئیوں کو متعلق کیا کچھ کہا ہے.
نبیوں کی یہ آرزو تھی, زمانوں سے نبیوں کی یہ آرزو تھی, زمین پر خدا خود کرے بادشاہی, زمین پر خدا خود دے بادشاہی. زمانوں سے نبیوں کی یہ آرزو تھی, وہ قوموں کی خواہش وہ امید محشر, وہ بخشش خدا کی بیاں سے جو باہر, وہ بخشش خدا کی بیاں سے جو باہر. زمانوں سے نبیوں کی یہ آرزو تھی, بشر کی دہائی سنی ہے خدا نے, بشر کی دہائی, زمین پر محبت اسے کھینچ لائی, زمین پر محبت اسے کھینچ لائی. زمانوں سے نبیوں کی یہ آرزو تھی.
جو کچھ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی کی وجہ سے گیت یہ پورا نہیں چل سکا, امید کرتا ہوں کہ ٹیکنیشین جو ہیں وہ اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اتنی دیر میں ہم سنتے دیکھتے ہیں اپنے اناؤنسمنٹ جو میں گیت کے بعد کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں یہ دن دکھایا تاکہ ہم آج آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں اور خداوند کے زندہ کلام کو آپ تک پہنچا سکیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا چرچ کرائسٹ آور کنگ لوتھرن چرچ مسیساگا کی جانب سے یہ پروگرام جو ہر اتوار ہوتا ہے. और हमारे चर्च का जो टेलीफोन नंबर है वो 648-905-822-8931 है, और पादरी जेम्स लू का टेलीफोन नंबर है 416-454-2581 है। अगर आप आपको आज किसी इस मैसेज के हवाले से आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो या आप उनसे बातचीत करना चाहते हैं तो आप जरूर उनसे टेलीफोन के जरिए रब्ता करें। और मेरा टेलीफोन नंबर है 647-339-0397 है। और अगर आपको कोई रेडियो के मुतालिक, चर्च के मुतालिक किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उन तमाम अजीजों का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि जो हमें दुआओं में सपोर्ट करते हैं और मॉनिटरी भी सपोर्ट करते हैं इस प्रोग्राम को, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी के साथ साथ बताना चाहता हूं कि अगर किसी को बाइबल मुकद्दस की कॉपी चाहिए उर्दू में, हिंदी में या पंजाबी इंग्लिश में, तो आप जरूर हमसे रब्ता करें, फादर साहब से या मुझसे रब्ता कर सकते हैं ताकि हम आपको खुदा के जिंदा कलाम की कॉपी भेज सकें। उसी के साथ साथ ये बताना चाहता हूँ, जैसा पाई साहब ने बताया कि हमें अपनी तैयारी की जरूरत है, ये जिस्मानी नहीं बल्कि बातनी तौर पर हमें तैयारी की जरूरत है कि हम अपने आप को रूहानी तौर पर तैयार करें। इंसान दाऊद नबी फरमाते हैं कि इंसान जो है गुनाह में पैदा हुआ है, गुनाह की हालत में पैदा हुआ है, लेकिन हमें हमारा छुटकारा खुदा यीशु मसीह के वसीला से होता है, उसकी कीमती खून की कुर्बानी के वसीला से होता है। तब जब हम उसे अपने शख्सी तौर पर कबूल करते हैं तो हमारे गुनाह जो माजी के हैं, हाल के हैं, मुस्तकबिल के हैं, खुदा यीशु मसीह उन्हें मिटा देते हैं और बर्फ की मानस सफेद हो जाते हैं हमारे। लेकिन हम शुक्र करते हैं उसकी बेशकीमत कुर्बानी के लिए। और आज जो पहला इतवार है वो जो बड़े दिन की जो उसकी आमद है, उसकी पैदाइश के मुतालिक है, उसको शुरू किया है। इन चार हफ्तों में ये प्रोग्राम चलता रहेगा और पादरी साहब जैसा खुदा उनका कलाम वो पेश करते हैं, अगले हफ्ते वो दूसरा टॉपिक लेंगे और उसके मुतालिक हम देखेंगे कि वो क्या बताना चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप जरूर हमें अपनी दुआओं में याद रखते हैं और इस प्रोग्राम को सुनते हैं, और अगर आप सुनते हैं तो अपने दोस्तों अजीजों को भी बताएं ताकि हम प्रोग्राम को और ज्यादा, अगर कुछ सलाह देनी चाहे तो आप बता सकते हैं ताकि प्रोग्राम को हम बहुत अच्छी तरह से पेश कर सकें, क्योंकि ये जिंदा खुदावंद का कलाम है। जैसा आपने सुना कि पाई साहब ने कहा कि बादशाहों का बादशाह पैदा हुआ है, तो हमें उसका एहतराम करना कितना जरूरी है। वो सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी तौर पर भी बादशाह है, आने वाली जिंदगी का मालिक वही है। तो हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की बहुत सख्त जरूरत है ताकि हम गुनाहों से तौबा करके उसके साथ चलें। भाई साहब आप लाइन पे हैं?
जी।
अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट दोज पीपल हु क्लेम्ड टू बी मसीहा, उनके मुतालिक आपका क्या ख्याल है जो अपने आप को मसीहा जानते हैं या इकरार करते हैं?
बात यह है कि बहुत सारे नाम जो हैं, आप अगर हिस्ट्री को देखें तो बहुत सारे लोगों ने ये क्लेम किया था कि किया है कि भाई वो एक तरह से मसीहा हैं, लेकिन जब आप उनकी जिंदगियों का जिक्र करते हैं और उनकी जिंदगियां देखते हैं और उनके कामों को देखते हैं तो आपको मालूम पड़ जाता है कि वो मसीहा नहीं हो सकते। जैसे कि मैं एक मिसाल दूंगा, क्योंकि ये ऐसी मिसाल है जो मेरा ख्याल किसी को हार्म नहीं करेगी, वो डेविड कुरैश की मिसाल है। डेविड कुरैश आपको मालूम है कि अमेरिका का रहने वाला था और उसने अपने आप को कहा था कि मैं मसीहा हूं, दूसरी आमद मसीहा की मैं हूं, लेकिन उसने अल्टीमेटली क्या हुआ था आपको मालूम है कि उसने 200 बच्चों को कैद किया हुआ था और उसके बाद उस पे जो है अमेरिकन आर्मी ने हमला किया और उसको मार दिया था। तो इस तरह के लोग बहुत सारे हुए हैं। एक और साहब गुजरे हैं, उन्होंने भी कहा कि मैं भी मसीहा हूं, लेकिन आप उनकी जिंदगी जब देखते हैं तो आपको मालूम है कि वो जो है वो मसीहा जो है अपने आप को कहते हैं वो बाथरूम में स्लिप होके मर गए थे। सो और बहुत सारी बातें हैं जो मैं कह सकता हूं, लेकिन मैं
लेकिन वक्त नहीं है, वक्त नहीं है।
کیونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے ہم کہہ نہیں سکتے. اس طرح سے بہت فرام ٹائم ٹو ٹائم پیپل ہیو کم جو کہ اپنے آپ کو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ مسیحا ہیں, لیکن وہ مسیحا کیا ہم, آئی مین میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ انسان بھی جو ہے اس کا دماغ جو ہے وہ کتنا کرپٹڈ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی بات مان جاتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے فالوورز تھے, ڈیوڈ قریش کے بھی فالوورز تھے اور جنہوں نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا ان کے بھی فالوورز تھے, لیکن جب ہم ان کی زندگی کو جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھیں, آپ ان کی زندگی دیکھیں, رائٹ فرام دا ویری بگیننگ اٹ از سپر نیچرل, اور ایسی زندگی آپ کو کہیں نہیں ملتی.
میں تو یہ کہوں گا پادری صاحب, اگر جو اس طرح کلیم کرتا ہے خداوند یسوع مسیح نے جو کچھ کیا ہے کوئی دوست یا کوئی رشتہ دار آپ کے لیے جان نہیں دے گا, اس نے تمام دنیا کے لیے اپنی جان صلیب پر قربان کی, اور یہ جو گناہوں کی مزدوری تو موت ہے, لیکن وہ موت ہم سہ نہیں سکتے جو اس نے سہی, تاکہ ہم اس دوسری موت کو نہ دیکھ سکیں اور زندگی میں داخل ہو سکیں. آپ نے کاموں کے متعلق ذکر کیا تھا, بائبل مقدس بتاتی ہے کہ اس کے کام کیا تھے, بیماروں کو شفا دینی, بدروؤں کو جادوگروں سے بچانا اور مردوں کو زندہ کرنا, بیماروں کو شفا دی, کیا کچھ نہیں ہے جو ہمیں چاہیے اس کی زندگی پر غور کر کے اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا, کیا وہ کر سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اب تک تمہارے ساتھ ہوں, نہ تمہیں چھوڑوں گا نہ دستبردار ہوں گا, بشرطے
میں اپنے مسلمان دوستوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں آج اسی وساطت سے, مسیحا کی وساطت سے, کہ جب ایسے لوگ ہیں گو کہ ہمارا ایمان ان کے ساتھ نہیں ملتا, کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح کو, حضرت عیسیٰ کو صرف ایک نبی مانتے ہیں, لیکن ان کو چلو نبی مانتے ہوئے اگر آپ قرآن شریف میں دیکھیں تو ان کا ذکر سب سے زیادہ ہے, اور ایسے لوگ ہیں جو اس کو پڑھ کے وہ مسیحی ہو چکے ہیں. میرے بھائی جو ہیں, دوست احباب جو مسلمان لوگ سن رہے ہیں, مہربانی سے آپ حضرت عیسیٰ کی زندگی کو ہی دیکھیں تو پھر آپ کو معلوم پڑے گا کہ یہ شخصیت جو ہے یہ بڑی انوکھی شخصیت ہے, بڑی ڈیفرنٹ ہے, اس طرح کا کوئی انسان آج تک آیا نہیں ہے, نہ آئے گا اور نہ آیا ہے. اس لیے مسیحا جو ہے, مسیحا کی جو خصوصیات ہیں وہ صرف خداوند یسوع مسیح پہ پوری آتی ہیں, کسی اور پہ پوری نہیں آتی ہیں.
تو بائبل مقدس بتاتی ہے, پڑھیں, ہاں جی, تو اگر آپ دیکھیں نئے عہد نامے میں, پرانے عہد نامے تمام پیشن گوئیاں ہیں, دیکھیں نئے عہد نامہ میں خداوند یسوع مسیح نے جو کچھ کیا وہ, میں یہ سوچتا ہوں کہ انسان نے, انہوں نے اپنے متعلق کچھ نہیں کہا, جو کچھ بھی بائبل مقدس میں خدا کی پاک روح کی گائیڈنس میں لکھا گیا ہے دوسرے شاگردوں نے لکھا ہے, جو کچھ انہوں نے دیکھا اور کیا ہے, اور اگر کوئی اپنے متعلق لکھے تو لکھ سکتا ہے میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں فلاں, لیکن نہیں, بات وہ ہے جو دوسرے دیکھ کر اس کی عملی زندگی کو دیکھ کر وہ اس پہ لکھیں. پادری صاحب آپ نے گھنٹی سن لی ہے تو مجھے لگتا ہے ٹائم بڑی جلدی سے گزر جاتا ہے. خدا من نے چاہا تو ہم اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات کریں گے. آپ اپنا خیال رکھیں, دوسروں کا بھی خیال رکھیں, ہمیں اجازت دیں, تب تک کے لیے خدا حافظ.
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
The views expressed on the preceding program may not necessarily be those of the owner or management of WTOR radio station.
Investment alert.
جی ہاں, 125 ایکڑ زمین کا ٹکڑا برینٹ کے شہر میں, جس کے تین سائٹ پہ سڑک لگتی ہے, 1000 فیٹ رائٹ آن ہائی وے 2, दूसरी साइड पे हाईवे 403 तीसरी सड़क प्रॉपर्टी 9 की है। इसमें 3 बेडरूम का एक घर बना हुआ है, साथ में एक बड़ा शेड, एक बड़ा बान भी है। याद रखो ये 82 एकड़ जमीन फार्मिंग वास्ते इस्तेमाल हो रही है। इट्स अ मनी प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी, पोटेंशियल फ्यूचर डेवलपमेंट लैंड एज इट इज राइट ऑन हाईवे 403। 125 एकर्स ऑफ लैंड इन ब्रांड। Call Arifa Muzaffar 647